आगे है जी सूरज सजदा, 30 आयात है, 32 नंबर की सूरह है। इत्तफाक देखिए कि सूरत मुल्क और सजदा जो अल्लाह के नबी रातों को पढ़ते थे, ये दोनों सूरतें ही 30 30 आयात की हैं। इसके बारे में एक रिवायत भी है, अल्लाह के नबी रात को अलिफ लाम मीम तंजील और इसी तरह से तबारक अल्लज़ी पढ़ते थे, इससे पहले सोते नहीं थे। हज़रत जाबिर से रिवायत है, 967 नंबर की। इस पे अमल करते हुए इंशाल्लाह हमने भी ये आयत पढ़नी है। इस सूरत के बारे में भी चंद बातें नोट कीजिए, क्योंकि आप सूरतें पूरी हैं ना, तो अगर आपको इनका ये जिस्त जो शुरू में दे रही हूँ ये आप ले लें, तो आपको ये नहीं लगेगा कि हम सिर्फ तर्जमा ही पढ़ रहे हैं, बल्कि इसमें बहुत कुछ है। तो सूरत सजदा, इसका मेन टॉपिक क्या है? कुरानी दलाइल पे गौर व फिक्र करो और फिर अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाओ। दूसरी चीज़, इसमें मोमिन और फासिक का अंजाम बताया गया कि ये मुख्तलिफ होगा, लिहाजा तुम अपने आप को देखो कि तुम किधर हो। पूरी सूरत को अगर इकट्ठा कर दूँ तो इसमें 5 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है आयत नंबर 1 से 6 तक है, जिसमें अल्लाह ताला का तारुफ भी है और कुरान की खूबियाँ भी हैं। फिर आयत नंबर 7 से लेकर 14 तक दूसरा टॉपिक है दलाइले आखिरा, आखरत के दलाइल हैं, जिसमें 7 से 9 में दलाइले अनफुस हैं और 10 से 14 में कुदरत और ताकत से इस्तदलाल लिया जा रहा है। फिर उसके बाद आयत नंबर 15 से लेके 22, 15 से 22 में कुरान पर ईमान और कुरान का इनकार करने वाले दो मुख्तलिफ गिरोह, एक मोमिनीन 15 से 19 और 20 से 22 में फासिकीन की सिफात हैं। उसके बाद है जी जजा सजा के दलाइल, 4th टॉपिक है आयत नंबर 23 से 27, इसमें फिर 23 से 26 में तारीखी दलाइल है और 27 में रबूबियत के दलाइल हैं। और आखिर में फिर आखिरी हिस्सा जो 28 से 30 तक है, मज़लूम मुसलमानों को दरगुजर और सब्र की नसीहत है। आइए पढ़कर देखते हैं कि आखिर इस सूरत में क्या बात छुपी हुई है कि अल्लाह के नबी इसके बग़ैर नहीं सोते थे। और याद रखिए, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर होती है, अदरवाइज़ सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि बस काम करना है तो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन। रुकू नंबर 14 आयत 1 से 11, तख्लीक इंसानी। बिला शुबा इस किताब का उतारना तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये कहते हैं कि इसने इसे घड़ लिए? नहीं नहीं, बल्कि ये तेरे रब की तरफ से हक है, ताकि आप इन्हें डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो राह रास्त पर आ जाएं। अल्लाह ताला वो है जिसने आसमानों ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है सबको 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर कायम हुआ। तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई मददगार और सिफारशी नहीं, इस पर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? वो आसमान से लेकर ज़मीन तक हर काम की तदबीर करता है, फिर वो काम एक ऐसे दिन में इसकी तरफ चढ़ जाता है जिसका अंदाज़ा तुम्हारी गिनती के 1,000 साल के बराबर है। यही है छुपे खुले का जानने वाला, ज़बरदस्त गालिब और बहुत मेहरबान, जिसने नहायत खूब बनाई जो चीज़ भी बनाई। इज़ इट ट्रू? जो चीज़ देखिए दी बेस्ट तरीके से। और इंसान की बनावट मिट्टी से शुरू की, फिर इसकी नस्ल एक बेबुक्कत पानी के निचोड़ से चलाई, जिसे ठीक ठाक करके इसमें इसने रूपों की, इसी ने तुम्हारे कान आंखें और दिल बनाए, इस पर भी तुम बहुत थोड़ा एहसान मानते हो। शर्मिंदगी नहीं होती ऐसी आयतें सुनकर? और उन्होंने कहा कि जब हम मिट्टी में रल मिल जाएंगे, क्या फिर नई पैदाइश में आ जाएंगे? बल्कि बात यह है कि ये लोग अपने परवरदिगार की मुलाकात के मुनकर हैं। कह दीजिए कि तुम्हें मौत का फरिश्ता फौत करेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। आपको मुझे रोज़ फरिश्ता आके देखता है, कई बार देखता है आकर दिन में, इसको कब लेके जाना है, इसको कब जाना है लेके। और सोचिए ज़रा, जिस दिन जाना है पता भी नहीं लगना, और अल्लाह आराम से ले जाए। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत आयत 4 के बारे में लीजिए कि अल्लाह के नबी ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर फरमाया कि अल्लाह ने मिट्टी को हफ्ते के दिन यानी ज़मीन को, इतवार को पहाड़ों को, पीर के दिन दरख्तों को और कामकाज की चीज़ों को, मंगल के दिन, बुध के दिन नूर को पैदा किया, जुमेरात के दिन ज़मीन में जानवर फैलाए और आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन असर के बाद बनाया। सबसे आखिर मखलूकात में और जुमे की सबसे आखिरी सात में असिर से लेकर रात तक। ये मुस्लिम की रिवायत 1605 है, ईमानियात से इसका ताल्लुक है। और ये रिवायत जो वुक्खिला बिकुम, फरिश्ता आपको मुझे रोज़ ताकता है, इब्ने अबी हातिम की एक रिवायत है। एक अंसारी के सरहाने मलकुल मौत को देखकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मलकुल मौत मेरे सहाबी के साथ आसानी कीजिए। उसने जवाब दिया, अल्लाह के नबी तस्कीन खातिर रखिए और दिल खुश कीजिए, वल्लाह ही मैं खुद बाईमान और नहायत नरमी करने वाला हूँ। सुनो या रसूलुल्लाह, कसम अल्लाह की, तमाम दुनिया के हर कच्चे पक्के घर में, ख्वाब वो खुश्की में हो या तरी में हो, हर दिन मेरे 5 फेरे होते हैं। 5 दफ़ा नमाजें कितनी हैं? हर छोटे बड़े को मैं इससे भी ज़्यादा जानता हूँ जितना वो अपने आप को जानता है। या रसूलुल्लाह, यकीन मानिए अल्लाह की कसम, मैं तो एक मच्छर की जान कब्ज़ करने की भी कुदरत नहीं रखता जब तक कि मुझे अल्लाह इसका हुक्म ना दे। ये तफसीर इब्ने कसीर में आप जाके पढ़ लीजिए। तो मलकुल मौत को भी अपनी महदूदियत का पता है, आप और मैं भी रखें, क्या पता कहाँ सांस उखड़ जाए। ये ज़िंदगी बड़ी कच्ची है, फ्रेजल है, हैंडल विद केयर, जल्दी से यूटिलाइज कीजिए। ये बर्फ़ है, पिघल रही है, कुछ करके दुनिया से जाएंगे इंशाल्लाह। क्या सीखा? लोगों को इंजाम से खबरदार करना है, अल्लाह की सिफात में गौर व फिक्र करना है, किताब की सच्चाई पर ईमान रखना है, शुक्र में कमी नहीं करनी, अपनी पैदाइश की हकीकत पे गौर व फिक्र करना है, और रब की मुलाकात का शौक़ अपने अंदर पैदा करना है। रुकू नंबर 15, 12 से 22, 12 to 22, मोमिनीन का तर्ज अमल। वलऊ तरा इज़िल मुजरिमून ना किसुरूसिहिम, काश के आप देखते जबकि गुनाहगार लोग अपने रब के सामने सर झुकाए हुए होंगे, कहेंगे कि हमारे रब, हमने देख लिया और सुन लिया, अब तू हमें वापस लौटा दे, हम नेक अमाल करेंगे, हम यकीन करने वाले हैं। अब क्या फ़ायदा, अब तो सब खुली आंखों से देख लिया। अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत नसीब फरमा देते, लेकिन मेरी ये बात बिल्कुल हक हो चुकी कि मैं ज़रूर ज़रूर जहन्नुम को इंसानों और जिन्नों से भरूंगा। अब तुम अपने उस दिन की मुलाकात को फरामोश कर देने का मज़ा चखो। हमने तुम्हें भी भुला दिया और अपने किए हुए अमाल की शामत से हमेशा के अजाब का मज़ा चखो। हमारी आयतों पर वही लोग ईमान लाते हैं जिन्हें जब कभी नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हम्द के साथ इसकी तस्बीह पढ़ते हैं और तकबुर नहीं करते, और इनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती हैं। ततजाफ जनूबो मनिल मदाजी, सिर्फ ताक रातों में नहीं, लैलतुल कदर के इंतज़ार में नहीं, बल्कि हर रात का कुछ हिस्सा। अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं, और जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है वो खर्च करते हैं। फला तालमु नफ्सु मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई नफ्स नहीं जानता जो कुछ हमने इसकी आंखों की ठंडक इनके लिए पोशीदा कर रखी है। जो कुछ करते थे ये इसका बदला है, क्या वो जो मोमिन हो मिसल इसके है जो मुफासिक हो? ये बराबर नहीं हो सकते। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक अमाल भी किए, इनके लिए हमेशगी वाली जन्नतें हैं, मेहमानदारी है इनके अमाल के बदले जो वो करते थे। लेकिन जिन लोगों ने हुक्म अदवली की यानी ना माना, इनका ठिकाना दोजख है, जब कभी इससे बाहर निकलना चाहेंगे इसी में लौटा दिए जाएंगे, और कह दिया जाएगा कि अपने झुटलाने के बदले आग का अजाब चखो। बिल यकीन हम इन्हें करीब के छोटे से बाज़ अजाब इस बड़े अजाब के सिवा चखेंगे ताकि वो लौट आए। जानते हैं ये क्या अजाब है? दुनिया की तकलीफ है। दुनिया में अल्लाह पहले पाक करता है फिर आगे लेके जाएगा। इससे बढ़कर जालिम कौन है जिसे अल्लाह की आयतों से बाज़ किया गया फिर भी इसने इनसे मुंह फेर लिया? यकीन मानो कि हम भी गुनाहगारों से इंतकाम लेने वाले हैं। तो क्या पता चला सहाबा कराम का नसीहत पर रद्द अमल क्या होता था? सजदों में गिर पड़ते थे, अल्लाह की तस्बीह और हम्द करते थे, इबादत से तकब्बुर नहीं करते थे, और रातों को बहुत कम सोते और इबादत में मशगूल रहते थे, रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते थे, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करते थे। आपने मैंने क्या करना है? ये सारे काम करने हैं, और अल्लाह की आयतों के ज़रिए नसीहत करना है, रात के कुछ हिस्से में रब की इबादत करनी है, तकब्बुर नहीं करना, रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारना है, और उसके दिए हुए रिस्क में से खर्च करना है, और आखिरत की मुलाकात को नहीं भुलाना। रुकू नंबर 16, आखिरी रुकू है सूरह सजदा का, 23 से 30। वलकद आतैना मूसल किताब, दावत गौर व फिक्र है, बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, पस आपको हरगिज़ इसकी मुलाकात में शक नहीं करना चाहिए, और हमने उन्हें बनी इसराइल की हिदायत का ज़रिया बना दिया, और जब उन लोगों ने सब्र किया तो हमने इनमें से ऐसे पेशवा बनाए जो हमारे हुक्म से लोगों को हिदायत करते थे और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। आपका रब इन सब के दरमियान इन तमाम बातों का फैसला क़यामत के दिन करेगा जिनमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। क्या इस बात में भी इन्हें कोई हिदायत नहीं दी कि हम इनसे पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया हमने जिनके मकानों में ये चल फिर रहे हैं? इसमें तो बड़ी बड़ी निशानियां हैं, क्या फिर भी ये नहीं सुनते? क्या ये नहीं देखते कि हम पानी को बंजर जमीन की तरफ बहा कर ले जाते हैं, फिर इसे हम खेतियां निकालते हैं जिसे इनके चौपाए और ये खुद खाते हैं? क्या फिर भी ये नहीं देखते? और कहते हैं कि ये फैसला कब होगा? अगर तुम सच्चे हो तो बतलाओ, जवाब दे दो कि फैसले वाले दिन ईमान लाना बेईमानों को कुछ काम ना आएगा और ना इन्हें ढील दी जाएगी। अब आप इनका ख्याल छोड़ दें और मुंतजर रहें, ये भी मुंतजर रहें। किस बात के? कि अल्लाह की पकड़ इन पे आने वाली है। तो क्या सीखा? लोगों की रहनुमाई करनी है, सब्र करना है, अल्लाह की आयतों पे यकीन रखना है, अल्लाह की सिफत रज़ाकियत पे गौर व फिक्र करना है, पिछली कौमों के हालात से इबरत लेनी है और आपस में इख्तलाफ नहीं करना। तो क्या पता चला कि रात को जब ये सूरत आप पढ़ें, इतनी बातें अगर आपके जहन में हों तो क्या हो सकता है कि गफलत की नींद आए? नहीं। इसके बाद है जी वो सूरत जिसका इंतज़ार था, इंतज़ार ख़त्म हुआ, सूरत अल-अहज़ाब। तरतीब में हम देख रहे हैं 33 नंबर की सूरह, और इस पारे में इसकी 73 आयात हैं। इस सूरत को हम देखेंगे आगे जाकर, थोड़ा सा इसका मिजाज भी समझिए, बड़ी अहम सूरत है। एक तो कमेंट ले ले मेरी तरफ से, दो लफ्ज़ लिखिए, वॉर्स ऑफ द प्रॉफिट, नबी की जंगें, मुलाहिमात, और दूसरा लिखिए वाइव्स ऑफ द प्रॉफिट, नबी की बीवियाँ। दौरे हाजिर के दो मौजू हैं जिस पे गैर मुस्लिम बहुत बोलते हैं, और दोनों बातों का जवाब इस सूरत में। अगर आप इस सूरत को देखें तो पूरी सूरत का एक मेन थीम है अमानत की जिम्मेदारियों को समझिए, कुफर और मुनाफ़कत को छोड़कर इखलास के साथ, फिर इसी तरह इस्लाम के ख़ानदानी, मुआशरती, मुआशी, जंगी, सियासी और इसी तरह से इज्तमाही अहकाम पे अमल करो। यानी बड़ी कॉम्पैक्ट सूरह है, इस पे तो एक कोर्स होना चाहिए पूरे का पूरा। पूरी सूरत को अगर आप देखें तो नंबर 1 से 3 तक आयात में कुफार और मुनाफिकीन की इताअत करने से रोका गया, 4 से 6 में सोशल जस्टिस के इजहार की बात है और मुंह बोले बेटे के मुतल्लिक कुछ अहकाम हैं, आयत 7 और 8 मीसाक का मकसद जजा और सज़ा है, आयत 9 से 21 जंगे खंदक यानी अहजाब और मुनाफिकीन के किरदार और नबी के उसवे हसना का तذکرہ, आयत 22 से 25 में जंगे अहजाब और मुखलिस सहाबा का किरदार है, और फिर 26-27 में गज़वे बनु कुरैज़ा का तذکرہ, 28 से 40 में आयली यानी ख़ानदानी और माशरती अहकाम है, 41 से 48 मुखलिस सहाबा को नसीहतें हैं, आयत 49 से 50 माशरती और ख़ानदानी अहकाम, और आयत नंबर 60 से मुनाफिकीन को वार्निंग है, क़यामत का खौफ दिलाया गया है, और उसके बाद फिर आयत नंबर 69 से 71 में मशरूत पेशकश कौले सदीद से मुतल्लिक, और आखिरी आयतें 72-73 में अमानत का बोझ। ये है नटशेल में सूरत अल अहज़ाब, और इस एक सूरत को पढ़ने के बाद कम से कम आप ये तो मान जाएंगे कि हमें कुरान पढ़ने की ज़रूरत है और नबी की सीरत समझने की ज़रूरत है। सीरत से भरी पड़ी सूरत है, और इस सूरत के अंदर आपको जो 3 किरदार दिखेंगे जो पारे के शुरू में भी बता दिए गए थे उनके नाम भी दोहरा लीजिए, जैद बिन हारिसा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा, और इसी तरह से सलमान फारसी जिनके बारे में हम पीछे सुन चुके कि जिनके मशवरे पे खंदक खोदी गई थी। जैद बिन हारिसा के बारे में चंद बातें नोट करते जाइए, अल्लाह के नबी के मुंह बोले बेटे, हज़रत खदीजा ने निकाह के मौके पे आपको तोहफे में ये दिए थे लेकिन आपने इनको आज़ाद करके बूंबला बेटा बना लिया। लोग इनको जैद बिन मोहम्मद कहने लगे। आपने इनकी बेहतरीन तरबियत की। शब और रोज़ नबी के साथ गुज़रे। इनके जंगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। गज़वाए मूता में सिपा सेलारी के इंजाम बेजिगरी से दिए। रसूलुल्लाह की जैद और इनके घर वालों से मोहब्बत ज़रबुल मिसल थी। कुराने पाक में जैद का नाम है, ये इनकी एक ख़ास खूबी लिखिए। दूसरी हस्ती हैं ज़ैनब बिनते जहश। नबी सल्लम की फूफी जात बहन थी। बेहद दीनदार और परहेजगार, इंतहाई फैयास, दूसरों का ख्याल रखने वाली, अल्लाह की रज़ा चखने वाली। इनका निकाह जैद के तलाक के बाद आसमानों पर अल्लाह ने किया, ये इनकी खूबी है। मसाकीन और गुरबा का ख्याल रखती थी और इनको लंबे हाथों वाली कहते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद फिर इनकी वफ़ात हुई थी। इंतहाई कनात वाली फैयाज तबा थी। खुद काम करती, पैसे जो मिलते या चीज़ मिलती उसको सदका कर देती थी। अल्लाह के नबी ने कहा था कि तुम में से मेरे साथ वो मिलेगी सबसे पहले जिसके हाथ लंबे हैं। फैयाजी की तरफ इशारा था। अजवाज मुतहरात नहीं समझी, अपने हाथों को नापा करती थी, मेरे हाथ इतने, आपके इतने इतने। लेकिन जब नबी सल्लम के बाद सबसे पहले हज़रत ज़ैनब का इंतकाल हुआ तो सहाबियात समझ गईं और अजवाज भी समझ गईं कि ये हज़रत ज़ैनब थी। खुददार थी, नेक थी और रोज़ेदार, नमाज़ी, परहेजगार थी। उम्मे सलमा कहती इनके बारे में, यानी देखिए सौकने इनके बारे में कितने अच्छे कमेंट्स दे रही हैं। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने कोई औरत ज़ैनब से ज़्यादा दीनदार, ज़्यादा परहेजगार, ज़्यादा सच बोलने वाली, फैयाज, मुखय्यर और अल्लाह की रज़ा जुई में सरगर्म नहीं देखी। इनके जोहद और वरा का हाल ये था कि जब हज़रत आयशा पे इल्ज़ाम लगा और इसमें खुद ज़ैनब की बहन हमना शरीक थी, तो आपने इनसे हज़रत आयशा की अखलाकी हालत के बारे में जब पूछा तो इन्होंने कहा कि मुझे तो आयशा में भलाई के सिवा और कुछ नहीं पता। तो गोया कि हज़रत आयशा की तस्दीक की और आपकी तारीफ़ की। और बहरहाल बड़ी नेक खातून थी, लेकिन देखिएगा इतनी बड़ी आजमाइश इनकी आ रही है। आइए पढ़ते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, वक्त में बरकत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 17, 128, ले पालक के बारे में अहकाम शरीयत। या युहन नबी युत्तकिल्ला। अंदाज़ देखिए ज़रा सूरत शुरू होने का, वेरी डायरेक्ट। ए नबी, अल्लाह ताला से डरते रहिए और कुफार और मुनाफिकों की बातों में ना आ जाइए। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। जो कुछ आपकी जानिब आप के रब की तरफ से वही की जाती है, इसकी ताबेदारी करें। यकीन मानिए कि अल्लाह ताला आपके हर अमल से बाखबर है। आप अल्लाह ही पर तवक्कुल रखें, वो कारसाजी के लिए बेहतर है और काफ़ी है। किसी इंसान के सीने में अल्लाह ने दो दिल नहीं रखे, औरत के जिस्म में रखे हैं प्रेगनेंसी में, इसीलिए यहाँ लफ्ज़ रजुल है, रिजाल का लफ्ज़। और अपनी जिन बेवियों को तुम माँ कह बैठते हो, इन्हें अल्लाह ने तुम्हारी सचमुच की माएँ नहीं बनाया और न तुम्हारे ले पालक लड़कों को वाकई तुम्हारे बेटे बनाया। ये तो तुम्हारे अपने मुंह की बातें हैं। अल्लाह ताला हक बयान फरमाता है और वो सीधी राह सुझाता है। तो आज के बाद ये मत कहिएगा कि मैंने फलां को बेटा बनाया हुआ है, वो तो मेरा भाई है। ये गलत रिश्ते होते हैं, गैर महरम गैर ही होता है। ले पालकों को इनके हकीकी बापों की तरफ निस्बत करके बुलाओ, यानी बच्चे की बल्दिया चेंज ना करो। अल्लाह के नज़दीक पूरा इंसाफ यही है। फिर अगर तुम्हें इनके हकीकी बापों का इल्म ही ना हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं। तुमसे भूल चूक में जो कुछ हो जाए इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। अलबत्ता गुनाह वो है जिसका इरादा तुम दिल से करो। अल्लाह ताला बड़ा ही बख्शने वाला और मेहरबान है। पैगंबर मोमिनों पर खुद इनसे भी ज़्यादा हक रखने वाले हैं। इसको भी सोचिएगा, यानी आपका मेरा अपना हक अपने ऊपर इतना नहीं जितना नबी का हक हम पर है। कुछ भी कर दे हमारे बारे में डिसाइड, हमें मानना पड़ेगा। और पैगंबर की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। ये है आयत जो अल्लाह के नबी की बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन का टाइटल दिलवाती हैं। और रिश्तेदार किताबुल्लाह की रूह से बनिस्बत दूसरे मोमिनों और मुहाजिरों के आपस में ज़्यादा हकदार हैं। मगर ये कि तुम अपने दोस्तों के साथ हुस्ने सलूक करना चाहो, ये हुक्म किताब इलाही में लिखा है। जबकि हमने तमाम नबियों से अहद लिया और बिलखसूस आपसे और नूह से और इब्राहिम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा से, और हमने इनसे पक्का और पुख्ता अहद लिया ताकि अल्लाह ताला सच्चों से इनकी सच्चाई के बारे में दरियाफ्त फरमाए, और कुफार के लिए हमने अलमनाक अजाब तैयार कर रखे हैं। क्या पता चला कि जिस्म में दो दिल नहीं होते, ये क्यों था? इसके बारे में एक शान नज़ुल में रिवायत आती है तिरमिज़ी की 3199 कि एक मौका था, अल्लाह के नबी नमाज़ पढ़ रहे थे, आपसे कुछ सहव हो गया। आपके साथ नमाज़ पढ़ने वाले मुनाफिकीन ने कहा, क्या तुम देखते नहीं कि इनके दो दिल हैं, एक तुम लोगों के साथ और एक औरों के साथ? इस पर फिर अल्लाह ने मा जाला वाली आयत नाजिल की। इसी तरह से आयत 125 की शान नज़ुल में हज़रत ज़ैद और ज़ैनब का वाक़िया था। ऐसी रस्में गुंदी होती हैं माशरे में, जैसे बालों में च्युइंगम लग जाए और उतरती नहीं। अरब लोग मुंह बोले बेटे की बीवी को बहू समझकर उससे हमेशा के लिए ताल्लुक ऐसे ही रखते थे जैसे सगे ससुर से होता है। अल्लाह इस रस्म को तोड़ना चाहते थे, चूंकि नबी आखिरी नबी थे लिहाजा आपके ज़रिए तोड़वाई। तो ज़ैद जो आपके मुंह बोले बेटे थे, इनका निकाह ज़ैनब से आप करा चुके थे जो आपकी फूफीजाद बहन थी, लेकिन किसी वजह से दिल नहीं मिले। नहीं मिले तो नहीं मिले। उधर से तलाक हुई, अल्लाह ने पहले ही बता दिया था कि इसके बाद आपका निकाह ज़ैनब से होगा। आप बहुत डर रहे थे क्योंकि लोग बातें करेंगे, नबियों को बात का डर नहीं होगा क्या? अल्लाह ने ये सारी आयतें नाजिल करके कह दिया कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हें लोगों की बातों से बचाऊंगा। और फिर वही हुआ, यहाँ से निकाह टूटा। आसमानों पर हज़रत ज़ैनब के साथ अल्लाह ने निकाह करवा दिया, और हज़रत ज़ैनब इस पर मान किया करती थी कि मेरा निकाह तो आसमानों पे हुआ। फिर ये निकाह इतना ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा के लिए बरकत वाला हुआ कि इसी मौके पे पर्दे की आयात भी नाजिल हुई और महफिलों के कुछ अदब और आदाब भी थे। फिर इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर से एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी के आज़ाद किए हुए ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा को हम हमेशा ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे, तो उस पर फिर ये आयत नाजिल हो गई थी कि तुम उनको उनके बापों के नामों से पुकारो। तो बच्चे को अडॉप्ट भी अगर आप कर लें, उसका बाप उसका नाम मत छुपाइए, कल तो पता लग ही जाना है। और ये रिवायत 1155 में है। हज़रत अनस से एक रिवायत आयत 6 के मुतालिक ले लें, आपने फरमाया, तुम में से कोई ईमानदार ना होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए। ये बुखारी की रिवायत 15 है। आपने मैंने क्या करना है? कुफार और मुनाफिकीन की इताअत नहीं करनी, अल्लाह ताला से डर के रहना है, वही की पैरवी करनी है, सच्चा बनना है, अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है, और नबी को हर रिश्ते से बढ़कर अजीज़ जानना है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। आगे जी रुकू नंबर 18, 18, 9 से 20, यहाँ से गज़वे अहज़ाब जिसको गज़वे खंदक भी कहते हैं उसका तज़किरा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाही, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने जो एहसान तुम पर किया है इसे याद करो, जबकि तुम्हारे मुकाबले को फौजों पर फौजें तुम पर आईं। वो इशारा है जो हम आप पीछे सुन चुके। फिर हमने इन पर तुंदो तेज आंधी और ऐसे लश्कर भेजे जिन्हें तुमने नहीं देखा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला इसे देखता है, यानी अल्लाह ताला सब कुछ देखता है। जबकि दुश्मन तुम्हारे पास ऊपर से और नीचे से चढ़ दौड़े थे, और जबकि आंखें पथरा गईं और कलेजे मुंह को आ गए, और तुम अल्लाह ताला की निस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे, यही मोमिन आजमाए गए वजुल जिलो जिल जालन शदीदा, और बुरी तरह से झंझोड़ दिए गए। गज़वे खंदक हकीकत में असाब शिकन जंग थी। आम लोग तो वो हालात बर्दाश्त न करें जो उधर थे, इसीलिए फिर ऐसे वक्त में मुनाफिक और मोमिन अलग हो जाते हैं। और इस वक्त मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में शक का रोग था कहने लगे, अल्लाह ताला और इसके रसूल ने हमसे महज धोखा फरेब का ही वादा किया था, नऊज़ु बिल्ला। इन्हीं की एक जमात ने हांक लगाई कि ऐ मदीना वालो, तुम्हारे लिए ठिकाना नहीं, चलो लौट चलो। और इनकी एक जमात ये कहकर नबी से इजाज़त मांगने लगी, हमारे घर गैर महफूज हैं, हालांकि वो खुले हुए और गैर महफूज नहीं थे, लेकिन इनका पुख्ता इरादा भाग खड़े होने का था। और अगर मदीना के अतराफ से इन पर लश्कर दाखिल किए जाते, फिर इनसे फितना तलब किया जाता, तो ये ज़रूर इसे बरपा कर देते और ना लड़ते मगर थोड़ी मुद्दत। इससे पहले तो उन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि पीठ न फेरेंगे, और अल्लाह से किए हुए वादे की बाज़ पुरस होगी। कह दीजिए कि तुम मौत से या खौफे कत्ल से भागो, तो ये भागना तुम्हें कुछ भी काम न देगा, और इस वक्त तुम बहुत ही कम फ़ायदा उठाओगे। पूछिए, अगर अल्लाह तुम्हें कोई बुराई पहुंचाना चाहे या तुम पर कोई फजल करना चाहे तो कौन है जो तुम्हें बचा सके या तुमसे रोक सके? अपने लिए सिवाय अल्लाह के कोई हिमायती ना पाएंगे और ना मददगार। अल्लाह ताला तुम में से इन्हें बखूबी जानता है जो दूसरों को रोकते हैं और अपने भाई बंदों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ, और कभी कभी ही लड़ाई में आ जाते हैं। तुम्हारी मदद में पूरे बखील हैं। फिर जब खौफ और दहशत का मौका आ जाए तो आप इन्हें देखेंगे कि आपकी तरफ नजरें जमा देते हैं और इनकी आंखें इस तरह घूमती हैं जैसे उस शख्स की जिस पर मौत की खुशी तारी हो। फिर जब खौफ जाता रहता है तो तुम अपनी तेज जुबानों से बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। माल के बड़े ही हरीस हैं, ये ईमान लाए ही नहीं। अल्लाह ताला ने इनके तमाम अमाल ज़ाया कर दिए और अल्लाह ताला पर ये बहुत आसान है। समझते हैं कि अब तक लश्कर चले नहीं गए और अगर फौजें आ जाएं तो तमन्ना करते हैं कि काश वो सहरा में बादिया नशीनों के साथ होते और तुम्हारी खबरें दरियाफ्त किया करते। अगर वो तुम में मौजूद होते तो भी ना लड़ते मगर बराए नाम। खुल खुल के जिक्र है, क्यों ना उनको बुरा लगे? मुनाफिक ऐसी सूरतें नहीं सुन सकते थे। आप देखिए सूरत तौबा वाला बिल्कुल अंदाज है। तो जिस हवा का यहाँ जिक्र किया गया है इसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं सबा हवा से मदद दिया गया हूँ और कौमे आद के लोग तुंदो तेज हवाओं से हलाक किए गए थे। ये बुखारी की रिवायत है 4105 में। गज़वे अहज़ाब मुश्किल तरीन मार्का था लेकिन सहाबा का ईमान मुतज़लज़ल नहीं हुआ। क्यों? दिल में ईमान जड़ें पकड़ चुका था। दिल में ईमान की जड़ें इतनी गहरी हों कि जुलजुलुजलजालन शदीदा की आंधियां भी चलें तो इंसान न भिदके। नबी सल्लम के साथ जमे रहे और अल्लाह की रज़ा के मुस्तहिक हुए। आपने मैंने भी यही करना है इंशाल्लाह। अल्लाह की नेमतों को याद रखना है, अल्लाह और रसूल के वादों को फरेब नहीं समझना, फितनों में नहीं पड़ना, मैदाने जंग से पीठ नहीं फेरनी, अल्लाह तआला के बारे में बुरे गुमान नहीं रखने और फ़ायदों के हरीस नहीं बनना। इसके बाद है जी रुकू नंबर 19, 21 से 27 आयत है। मुश्किलात ईमान में इजाफे का बायस बनती हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में उम्दा नमूना मौजूद है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला की और क़यामत के दिन की तवक्को रखता है और बकसरत अल्लाह ताला को याद करता है। और ईमानदारों ने जब कुफार के लश्करों को देखा बेसाख्ता कह उठे, कहीं का वादा हमें अल्लाह और उसके रसूल ने दिया था और अल्लाह ताला और इसके रसूल ने सच फरमाया और इस चीज़ ने इनके ईमान में और शेवाए फरमाबरदारी में और भी इजाफा किया। यानी मोमिन का ईमान मुश्किलात में और बढ़ता है। मोमिनों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जो अहद अल्लाह ताला से किया था इन्हें सच्चा कर दिखाया। बास ने तो अपना अहद पूरा कर दिया और बास मौके के मुंतजर हैं और उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की। यानी दे डिडंट चेंज देयर प्लान, नीयतें नहीं बदली। नहीं नहीं हमसे नहीं हो सकता, वो तो हमने जज्बाती हो कैसे कह दिया था, ईद की छुट्टियों में पता चला कि इट्स नॉट पॉसिबल। दुआ करें कि ऐसा कभी ना हो, ताकि अल्लाह सच्चों को इनकी सच्चाई का बदला दे और अगर चाहे तो मुनाफिकों को सजा दे या इनकी तौबा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला बड़ा ही बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला ने कुफार को गुस्से में भरे हुए ही ना मुराद लौटा दिया, उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं पाया और इस जंग में अल्लाह ताला खुद ही मोमिनों को काफ़ी हो गया। अल्लाह ताला बड़ी कुव्वतों वाला और गालिब है और जिन अहले किताब ने इनसे सास बास कर ली थी इन्हें भी अल्लाह ने इनके कलों से निकाल दिया और इनके दिलों में भी रोह भर दिया कि तुम इनके एक गिरोह को कत्ल कर रहे हो और एक गिरोह को कैदी बना रहे हो और इसने तुम्हें इनकी ज़मीनों का और इनके घरों का और इनके माल का वारिस कर दिया और इस ज़मीन का भी जिसको तुम्हारे कदमों ने रौंदा नहीं। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। बनु कुरैज़ा और बनु खैबर की तरफ इशारा है। तो ये आयात सूरत अहज़ाब की आयत 23 अनस बिन नज़ीर के बारे में नाजिल हुई। ये जंगे बदर में नहीं शरीक हो सके थे, इनका अफसोस था। कहते थे कि पहली ही जंग और मैं उसमें ना आ सका। इन्होंने नीयत कर ली। जब गज़वे उहद का मौका आया तो इन्होंने साद बिन मास को देखा। कुछ इस तरह की बातें थी कि इन्होंने कहा कि मुझे उहद के पीछे से जन्नत की खुशबू आ रही है और फिर लड़े और शहीद हो गए। 80 से ज़ायद इनको जख्म आए। नेज़े और तलवारों का कोई ऐसा असर नहीं था जो इनके जिस्म पे ना हो और इनकी बहन ने उंगलियों की पोरों से इनकी डेड बॉडी को पहचाना। यानी उन्होंने चॉप कर दिया था, मुसला कर दिया था, तो बहरहाल ये आयतें अल्लाह ने नाजिल कर दी कि वो लोग हैं जिन्होंने नियतें करके अपनी नियतों को नहीं बदला। अल्लाह हम सब को भी इसी में रखे। क्या करना है, ये सब कुछ हमने भी करना है, और अल्लाह ताला को कसरत से याद रखना है, अल्लाह के नबी को अपने लिए नमूना समझना है, अल्लाह और रसूल की बात को सच्चा समझना है, अल्लाह ताला के साथ किए गए अहद को सच कर दिखाना है, तमाम कुदरत और कुव्वत अल्लाह की है, इस पर ईमान लाना है और कुफार की मदद नहीं करनी। उसके बाद आखिरी आयात है 28 से 29, 28 to 30, अजवाज़े मुतहरात के लिए अहकाम, और ये सिलसिला अब अगले पारे में भी कंटिन्यू होगा। या युहन नबी युकुल्ली अज़वाजिक, ए नबी अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिला दूँ और तुम्हें अच्छाई के साथ रुख्सत कर दूँ। ईला वाली आयात है। और अगर तुम्हारी मुराद अल्लाह और उसका रसूल और आखिरत का घर है तो यकीन मानो कि तुम में से नेक काम करने वालियों के लिए अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त अजर रख छोड़े हैं। ऐ नबी की बीवी, और तुम में से जो भी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करेगी इसे दोहरा दोहरा अजाब दिया जाएगा, और अल्लाह के नज़दीक ये बहुत ही आसान बात है। इस आयत की शान नज़ूल में बुखारी में 4785 नंबर की रिवायत पढ़ लीजिए। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले हज़रत आयशा को ये इख्तियार दिया था कि दूसरों से मशवरा कर लो, और तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ और खूब सा सामान दे दूँ। तो इन्होंने कहा, अल्लाह के नबी आपके बारे में मैं किसी और से मशवरा करूँगी। और फिर यही बात बाद में दूसरी बीवियों ने भी की। इतने प्यारे शौहर को छोड़कर कोई जाएगा? अल्लाह अकबर। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला की अजवाज़े मुतहरात को थोड़ी सी इसमें सरजिश है। क्या कि अगर आप दुनिया की जीनत चाहती हैं तो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार भी है और आखरत भी है, तो फिर दोनों में से चूज़ कर लीजिए। और अगर अच्छे लोगों से, मुकम्मल लोगों, यानी कह लीजिए कि जो कामयाब लोग होते हैं जिनको दूसरे फॉलो करते हैं, छोटी सी भी गलती होती है ना तो दूसरों को ज़्यादा चुभती है। दल्लतु आलिम, दल्लतु आलम, आलिम की गलती जहान की गलती बन जाती है। तो बहरहाल ये मौजू आगे हम देखेंगे और अपने लिए दुआ करेंगे कि अगर अब लोग हमें कुरान के नाम से जानते हैं तो अल्लाह ताला हमें गलतियाँ करने से बचा दे। अपने लिए अमल के नुक्ते, अल्लाह और उसके रसूल और आखरत का इरादा करना है, नेक बनना है, खुली बेहयाई का इर्तिकाब भी नहीं करना और ढकी का भी नहीं, और दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत को आगे रख कर आखरत को पीछे नहीं करना। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पारा नंबर 21 ख़त्म हुआ।